यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 24 दिसंबर के बुलेटिन की हेडलाइंस। ऑनलाइन मंचों पर नफरत भरी सामग्री को रोकने के लिए फेसबुक की पहल का स्वागत। मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत की दुनिया भर से पुकार। इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच टिकाऊ समाधान के लिए फिर शुरू करनी होगी वार्ता। कोरोना वायरस महामारी से संस्कृति क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित। दुनिया भर में मीडिया कर्मियों के लिए हालात हो रहे हैं और ज्यादा घातक। और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के पास क्या है विकल्प, सुनिएगा एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने फेसबुक के निगरानी बोर्ड से विवादास्पद सामग्री, विशेष रूप से घृणास्पद या नफरत फैलाने वाली सामग्री के बारे में कोई फैसला करने से पहले नस्लीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को और ज्यादा अहमियत देने का आह्वान किया है। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टियर फर्नांडे वेरेनेस ने हाल में आई इन खबरों का स्वागत किया है कि फेसबुक के निगरानी बोर्ड ने ऐसे पहले 6 मामले स्वीकार कर लिए हैं जिनमें कुछ सामग्री को हटाए जाने के फैसलों के खिलाफ अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मंचों पर नफरत भरी भाषा का सबसे ज्यादा संभावित या लक्षित निशाना अल्पसंख्यक हैं, और हम जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऑनलाइन मंचों पर नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करने के अक्सर वास्तविक दुनिया में गंभीर नतीजे होते हैं, यहां तक कि नस्लीय सफाए और जनसंहार के रूप में भी सामने आ सकते हैं। ऑनलाइन मंचों पर घृणास्पद भाषा का इस्तेमाल और फैलाव मानव गरिमा व जीवन के लिए आज के दौर की सबसे ज्यादा गंभीर चुनौतियों में से एक है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मार्क जुकरबर्ग ने संस्था के निगरानी बोर्ड को इस सोशल मीडिया मंच का अपना सुप्रीम कोर्ट करार दिया। ये बोर्ड एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो फेसबुक के किसी सामग्री को प्रकाशित करने में विवेक का इस्तेमाल करने के फैसलों की समीक्षा करती है। UN विशेषज्ञ का कहना है कि फेसबुक के सामुदायिक मानकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घृणास्पद भाषा पर हाल ही में जारी की गई रणनीति व कार्य योजना में नफरत भरी भाषा के बारे में दी गई समझ के स्तर पर लाना चाहिए। उन्होंने फेसबुक द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने में कोताही को परेशान करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उलट बताया। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निकोलाय म्लादेनोफ ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए इसराइलियों और फिलिस्तीनियों, क्षेत्र के देशों और वृहद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबद्ध पक्षों को शांति प्रक्रिया में फिर से शिरकत कराने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का आग्रह किया है। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत या संयोजक के रूप में निकोलाय म्लादेनोफ का सुरक्षा परिषद को ये अंतिम संबोधन था। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के 4 पक्ष, अरब साझीदार और इसराइली व फिलिस्तीनी नेतृत्व, सभी को सार्थक बातचीत के रास्ते पर फिर से लौटने के लिए काम करना होगा। UN विशेष दूत ने कहा कि इसराइली और फिलिस्तीनी, यहूदी और अरब बहुत लंबे समय से संघर्ष के दौर में रहते आए हैं। नुकसान, तबाही और विस्थापन पीढ़ियों से हर एक घर व परिवार के निजी अतीत का हिस्सा हैं। इस तकलीफ भरे माहौल की तस्वीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल होकर क्षेत्र में अनेक स्थानों पर शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज बनना पड़ा है, जबकि यहूदियों को भी क्षेत्र में अनेक स्थानों से बेदखल होना पड़ा है और इसराइल में शरण लेनी पड़ी है। म्लादेनोफ ने याद दिलाते हुए कहा कि यह संघर्ष केवल जमीन या इतिहास भर का नहीं है, यह संघर्ष दो राष्ट्रों के वजूद और सह अस्तित्व का है। इसराइल द्वारा कब्जा किए हुए फिलिस्तीनी इलाकों में बुनियादी व जरूरी सेवाएं अधर में लटकी हुई हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी UNRWA के पास धन की भारी किल्लत हो गई है और उसे कम से कम 8.80 करोड़ की रकम की तुरंत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कहा है कि पूरे विश्व में 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले सांस्कृतिक सेक्टर पर कोरोना वायरस महामारी के कारण अपेक्षा से अधिक मार पड़ी है। यूनेस्को के मुताबिक इस संकट से उबरने के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र को लक्षित नीतियों और कार्रवाई की जरूरत है। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
यूनेस्को के अनुसार केवल फिल्म उद्योग में ही इस साल लगभग 1 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है, जबकि दुनिया की 1/3 आर्ट गैलरियां आधे से ज्यादा रोजगारों की कटौती कर सकती हैं। इसी तरह 6 महीने से संगीत और कॉन्सर्ट बंद होने के कारण संगीत उद्योग को प्रायोजकों से मिलने वाली 10 अरब से अधिक धनराशि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं वैश्विक प्रकाशन बाजार भी 7.5% तक सिकुड़ सकता है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजूले का कहना है कि 3 करोड़ रोजगारों के लिए जिम्मेदार यह क्षेत्र खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। संकट का सामना केवल ये सेक्टर ही नहीं कर रहा है, लोगों के लिए भी एक बड़ा नुकसान है क्योंकि उन्हें भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वंचित होना पड़ा है। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से ही अनेक संगीत कार्यक्रम, कला कार्यक्रम और उत्सव ऑनलाइन होते रहे हैं। हालांकि यूनेस्को के अनुमानों के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी जैसे मुद्दों के कारण विश्व स्तर पर 2 में से लगभग 1 व्यक्ति को उन कार्यक्रमों तक पहुंच हासिल नहीं हो पाती है। यूनेस्को ने इस स्थिति के समाधान के लिए एक संसाधन विकसित किया है जो सरकारों और नीति निर्माताओं को उन चुनौतियों से निपटने में मदद देगा जिसका सामना महामारी के दौरान कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों को करना पड़ रहा है। कल्चर इन क्राइसिस, अ पॉलिसी गाइड फॉर अ रेजिलिएंट क्रिएटिव सेक्टर में भविष्य में रचनात्मक उद्योगों का लचीलापन बढ़ाकर उन्हें मजबूत करने की सलाह भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी संस्कृति के क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव के लैंगिक आयामों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई का भी आग्रह कर रही है क्योंकि इस क्षेत्र में अनिश्चित रोजगार में महिलाओं की अनुपातिक संख्या अधिक है और वो विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक असुरक्षा का शिकार बनती हैं। इस गाइड में सरकारों के लिए 3 प्रमुख चरण प्रस्तुत किए गए हैं: कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों को प्रत्यक्ष समर्थन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को अप्रत्यक्ष समर्थन और सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करना। नीति मार्गदर्शिका में उल्लेखित विशिष्ट उपायों में रचनात्मक कार्यों व उत्पादों की खरीद व संविदा, आमदनी की हानि के लिए मुआवजा प्रदान करना, नए कौशल विकसित करने के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, नियमों और कर प्रोत्साहन से अस्थायी राहत प्रदान करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, मांग बढ़ाना और विशेष ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। इस गाइड में अनेक देशों से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी शामिल किए गए हैं।
यूनेस्को ने बताया है कि वर्ष 2020 के दौरान अभी तक कम से कम 59 मीडिया कर्मी मारे गए हैं, जिनमें 4 महिलाएं भी हैं। संगठन ने बुधवार को ये आंकड़े जारी करते हुए सूचना प्राप्ति और तथ्यात्मक पत्रकारिता को एक सार्वजनिक अच्छाई के रूप में कायम रखने के समर्थन में खड़े होने की पुकार भी लगाई। यूनेस्को ने एक वक्तव्य में कहा कि पिछले 1 दशक के दौरान औसतन हर 4 दिन में एक पत्रकार को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले ने कहा है कि अलबत्ता वर्ष 2020 में पत्रकारों की मौतों की संख्या तुलनात्मक रूप में सबसे कम रही है, लेकिन ये भी सच है कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की हिफाजत के लिए शायद ही पत्रकारिता की इतनी अहमियत रही हो, क्योंकि दुनिया कोरोना वायरस और उसके आसपास मौजूद दुष्प्रचार व गलत जानकारी के फैलाव के वायरस से भी जूझ रही है। ऑड्री अजूले ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी एक ऐसा सटीक तूफान साबित हुई है जिसने दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पत्रकारिता की सुरक्षा करना दरअसल सत्य की हिफाजत करना है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि लातिनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में 22-22 पत्रकारों की हत्याएं हुई और इन क्षेत्रों को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ मिलाकर कहा जाए तो पत्रकारों की सबसे ज्यादा हत्याएं इन क्षेत्रों में हुई हैं। इसके बाद अरब क्षेत्र में 9 और अफ्रीका में 6 पत्रकारों की हत्याएं हुई। यूनेस्को का कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में औसतन 10 में से 9 मामलों में दंड मुक्ति यानी न्यायिक प्रक्रिया का अभाव दिखा है। हालांकि वर्ष 2020 में कुछ बेहतरी भी देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव स्वास्थ्य में पोषण और खाद्य सुरक्षा में फल व सब्जियों की बहुत अहम भूमिका के बारे में जानकारी बढ़ाने के इरादे से वर्ष 2021 को फल व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इस अवसर पर टिकाऊ खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य पदार्थों को कूड़े कचरे में तब्दील होने से रोकने के लिए और ज्यादा प्रयास करने का भी आह्वान किया गया है। कुछ और जानकारी प्रतिष्ठा जैन से।
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने यह अभियान शुरू करने के मौके पर जारी अपने संदेश में कहा है कि फलों और सब्जियों के अनगिनत फायदों के बावजूद हम अभी उनका सेवन भरपूर मात्रा में नहीं करते हैं। महासचिव का कहना है कि फल और सब्जियां एक स्वस्थ और भिन्नता वाली खुराक का अटूट हिस्सा हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मुहैया कराते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करते हैं और अनेक बीमारियों का खतरा कम करने में भी मदद करते हैं। यूएन प्रमुख ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य और आजीविकाओं पर तबाही मचाई हुई है, हमें मिलजुल कर ही ये सुनिश्चित करना होगा कि बेहद नाजुक हालात में रहने वाले लोगों तक पोषक भोजन पहुंच सके, जिसमें फल व सब्जियां भी हों और कोई भी पीछे ना छूट पाए। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने खाद्य प्रणालियों और टिकाऊ विकास के बीच की मजबूत कड़ी की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तमाम संबद्ध पक्षों का आह्वान किया कि खाद्य प्रणालियों को और ज्यादा समावेशी, मजबूत व लचीली और टिकाऊ बनाएं, जिनमें उत्पादन व खपत के लिए ऐसी संपूर्ण व व्यापक दायरे वाले तरीके अपनाएं, जिनसे इंसानों और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदा हो। ध्यान देने की बात है कि फल व सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करने से अनेक तरह के स्वास्थ्य और पोषण फायदे होते हैं। फल व सब्जियां फाइबर, विटामिन और ऐसे खनिज पदार्थों से भरपूर होते हैं जो बच्चों की बढ़त और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही ये उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी मजबूत करते हैं। फल व सब्जियां खाने से डिप्रेशन यानी अवसाद और चिंता, मोटापे और गैर संचारी बीमारियों का भी बहुत कम जोखिम होता है। इन्हें खाने से पेट अच्छा रहता है और बारीक पोषक तत्वों की कमी से बचने में मदद मिलती है।
ऐसे समय जब विश्व भर में वैश्विक महामारी कोविड-19 पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो सभी देशों के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने की अतिरिक्त चुनौती भी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2021 में जलवायु कार्रवाई को विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। अनेक विकासशील देश भी जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए ज्यादा महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणभा घोष से बातचीत की और जानना चाहा कि भारत के सामने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी और कौन से उपायों की आवश्यकता है। सुनिए ये बातचीत।
अगर बिजली और जल क्षेत्र की बात करें तो उसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हमें किस तरह के नीतिगत साधनों, कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी?
एक जो चेंज होना पड़ेगा वो है सप्लाई साइड पॉलिसी से डिमांड साइड पॉलिसी। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक जो नीतियां थी वो प्राइमरीली ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसमें टेंडर्स इशू करते थे, बिडिंग होता था और प्रोजेक्ट डेवलपर्स आते थे, बिड करते थे टेंडर पे और वो रिवर्स ऑक्शन के बेसिस पे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा के प्राइसेस घटते रहे और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक सप्लाई साइड पुश है कि आप बना लो अक्षय ऊर्जा कैपेसिटी, कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया सामने तो फिर क्या करें? तो वहां पर वो डिमांड साइड का आ जाता है। तो हम कैसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, जिसे कहते हैं आरपीओ, उनको और रोबस्ट बनाए ताकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको यूज करे कि हम अब इतना प्रतिशत, आज अगर 10% है, दो साल बाद 15%, उसके बाद 20%, कि हम हमारा जो ऊर्जा हम खरीदेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा। भारत में अगर आप देख लें, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स को मिलाकर जितना ग्राउंड वाटर यूज होता है उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर भारत में सिंचाई के लिए यूज इस्तेमाल होता है। तो अगर हम अपने इलेक्ट्रिक कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक या डीजल पंप्स को सोलर बेस्ड पंप्स से रिप्लेस कर दें तो वो एक और एक रेवोल्यूशन बन सकता है।
हमने ऊर्जा की बात की, जल की बात की, परिवहन क्षेत्र की बात करते हैं। क्या भारत परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए ट्रैक पर है? अगले 5 वर्षों में ई मोबिलिटी और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं?
अगर आप सिर्फ रेल और रोड पे फोकस करें और कुछ सालों में, मतलब कि इस दशक में, भारतीय रेल उस स्केल का पहला रेलवे नेटवर्क होगा दुनिया में जो पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इसके ऊपर एक और एम्बिशन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्रेन चल रहे हैं उसमें सौर ऊर्जा का कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए। अब रोड ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, इसमें ऑलरेडी भारत ने ऐलान किया हुआ है कि काफी मोमेंटम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ।
इस ट्रांजिशन के लिए और 2030 तक भारत को स्वच्छ ऊर्जा के 450 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी बड़े निवेश की जरूरत है। हरित निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं आपकी नजर में?
कुछ एस्टिमेशंस में है कि $2.5 trillion जो आज भारत का GDP है उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ये क्लीन एनर्जी सेक्टर्स की तरफ। ऊर्जा का जो एक्सपेंस है वो इतना ज्यादा है कि वो मार्केट में नॉन कंपेटिटिव बन जाते हैं, और यही लघु उद्योग हमारे 40% एक्सपोर्ट्स के लिए 45% एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन इनके पास फाइनेंस नहीं है क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस हैं, इनके पास फाइनेंस नहीं है कि वो एनर्जी एफिशिएंट बन जाए। उनको कैसे लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल दे सके हम ताकि ये ऐसे क्लीन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके।
पूरी दुनिया इस वक्त कोविड महामारी से जूझ रही है, क्या COVID-19 से कुछ सबक मिले हैं जिन्हें जलवायु कार्रवाई से बेहतर तरीके से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
ये महामारी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमें अब रिस्क का फोकस करना चाहिए, एवरेज का नहीं। तो जब हम रिस्क समझेंगे तभी हम रेजिलिएंट बन सकेंगे। रिस्क और रेजिलियंस एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। तो अगर हम ये महामारी का ये लेसन सीख लें कि ये मत सोचो कि ये कभी नहीं होने वाला, लो प्रोबेबिलिटी है, नहीं, अगर हम रिस्क लेंस ले लें उसका कि नॉट जस्ट होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और उसके बेसिस पे क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाए, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्वेलेंस सिस्टम बनाए, यूनिफाइड रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क बनाए, एक्शन प्लान्स चेंज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाए, तो हम क्लाइमेट रिस्क के अगेंस्ट और रेजिलिएंट बन सकते हैं।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।